एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की इस खास चर्चा में।
नमस्कार, आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसे विषय में जो सदियों से हमें डराता भी रहा है और आकर्षित भी करता रहा है। मेरा मतलब है जादू टोना। हम बात करेंगे मैल्कम गैस्किल की किताब विचक्राफ्ट की, मतलब जादू टोने पर उनका जो गहरा विश्लेषण है उस पर।
हाँ, और ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, मतलब फिल्मों वाला मामला नहीं है। गैस्किल हमें दिखाते हैं कि कैसे जादू टोने से जुड़े विश्वास, डर और वो जो मुकदमे चले, वो असल में उस जमाने के समाज का आईना थे।
बिल्कुल,
ये हमें बताते हैं कि लोग अपनी जिंदगी की अनिश्चितताओं, डर और हाँ ताकत के रिश्तों से कैसे जूझते थे।
बिल्कुल, ये समझने की कोशिश है कि आखिर क्यों यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों सालों तक समझदार लोग भी जादू टोने पर इतना यकीन करते थे।
हाँ, ये सवाल तो है।
तनाव के माहौल में कैसे बर्ताव करता है,
सही कहा,
कैसे उन चीजों को समझने की कोशिश करता है जो उसकी समझ से शायद परे हों।
तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मैल्कम गैस्किल के बारे में।
जी,
ये हैं कौन जिन्होंने इस मुश्किल विषय पर इतनी गहराई से काम किया है?
मैल्कम गैस्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट इंग्लिया के एक जाने माने ब्रिटिश इतिहासकार हैं। उन्हें शुरुआती आधुनिक यूरोप और अमेरिका यानी लगभग 15वीं से 18वीं सदी का जो दौर था उसमें जादू टोना, जादू और आम लोगों की संस्कृति का दुनिया के बड़े विशेषज्ञों में गिना जाता है।
अच्छा,
उनका काम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलता। ये सालों की कड़ी मेहनत और पुराने दस्तावेजों मतलब आर्काइव्स की गहरी छानबीन पर आधारित है।
और उनकी खासियत क्या है? मतलब जादू टोने पर तो बहुत लिखा गया है, तो इनमें अलग क्या है?
देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं बनाते कि कब, कहाँ, कितने लोगों पर मुकदमे चले। नहीं, वो कोशिश करते हैं कि हम उस जमाने के लोगों की नजर से चीजों को देखें। पुराने रिकॉर्ड्स, चिट्ठियां, अदालती दस्तावेज, इन सबको पढ़कर वो समझने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के लिए जादू टोने का क्या मतलब था। वो हमें आगाह भी करते हैं कि हम आज के नजरिए से उन्हें बस अंधविश्वासी कहकर खारिज न कर दें।
ये बात अहम है, और ये भी कि वो इंग्लैंड और अमेरिकी बस्तियों दोनों के इतिहास को जानते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती होगी कि ये विश्वास अटलांटिक के दोनों तरफ कैसे पनपे और शायद बदले भी। क्या दोनों जगह एक जैसे हालात थे?
नहीं, थोड़े अलग थे, और यही गैस्किल दिखाते हैं। वो कानूनी रिकॉर्ड, लोगों की गवाहियों और उस दौर की चीजों का इस्तेमाल करके हमें उस जमाने के अनुभवों के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। उनकी लिखाई अकेडमिक जरूर है पर कहानी जैसी दिलचस्प है।
तो अब आते हैं किताब के मूल विचार पर। गैस्किल क्या कहना चाहते हैं जादू टोने के बारे में?
जी,
क्या है उनका मुख्य तर्क?
देखिए, गैस्किल का सबसे बड़ा तर्क ये है कि जादू टोने में विश्वास सिर्फ अज्ञानता या कोरी कट्टरता नहीं थी जैसा हम आज आसानी से सोच लेते हैं।
अच्छा,
बल्कि ये उस दौर की मुश्किल और अनिश्चित जिंदगी को समझने का एक तरीका था, एक फ्रेमवर्क था।
मतलब उस जमाने में जब अचानक कोई बीमारी आ जाती थी या फसलें खराब हो जाती थीं या किसी की बेवजह मौत हो जाती थी और उसका कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता था।
हाँ बिल्कुल, तब जादू टोने के आरोप एक तरह का जवाब देते थे। वो बताते थे कि ऐसा क्यों हुआ, किसके कारण हुआ और शायद इसका क्या इलाज हो सकता है। ये दुनिया को समझने का एक ढांचा था, भले ही हमें आज वो थोड़ा अजीब लगे।
और गैस्किल ये भी कहते हैं कि ये आरोप अक्सर हवा में नहीं उठते थे, इनके पीछे कुछ और भी होता था।
बिल्कुल नहीं, ज्यादातर मामलों की जड़ में असली सामाजिक झगड़े होते थे, जैसे पड़ोसियों में जमीन को लेकर कहासुनी या उधार न चुकाना।
हाँ,
किसी की मदद करने से इनकार कर देना या फिर समाज में अपनी हैसियत को लेकर खींचतान। तो ये जो जादू टोने के मुकदमे थे, विच ट्रायल्स, ये इन अंदरूनी झगड़ों को बाहर लाने और किसी तरह से समाज में व्यवस्था बनाए रखने का एक जरिया बन गए थे। ये ताकत, इज्जत और समुदाय में अपनी जगह बनाने का खेल था असल में।
अच्छा, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि पूरे समुदाय के ताने बाने से जुड़ा मामला था, क्या बात है।
हाँ, और गैस्किल की किताब का दायरा बहुत बड़ा है। वो इसकी पुरानी जड़ों से लेकर 18वीं सदी में इसके कमजोर पड़ने तक की पूरी कहानी कहते हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका दोनों शामिल हैं। वो धर्म, कानून, समाज, लिंग और लोगों की सोच यानी मनोविज्ञान लगभग हर पहलू पर नजर डालते हैं।
चलिए आप थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। गैस्किल इन मान्यताओं की शुरुआत कहाँ से देखते हैं? क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी जैसी हमें फिल्मों में दिखती हैं?
इसमें एक नया और ज्यादा खतरनाक पहलू जुड़ा, वो था शैतान के साथ सांठगांठ, मतलब डायबोलिज्म का विचार। अब जादूगर या डायन सिर्फ किसी को बीमार करने वाला नहीं रहा,
बल्कि
उसे शैतान का साथी माना जाने लगा, जिसमें ईश्वर को ठुकरा दिया है। ये बहुत बड़ी बात थी।
अच्छा, तो ये वो बदनाम किताब क्या नाम था, मेलियस मालिफिकारम, द हैमर ऑफ विचेस, इस तरह की चीजों ने आग में घी डाला?
बिल्कुल, ऐसी किताबों ने इन विचारों को फैलाया और उन्हें एक तरह की आधिकारिक शक्ल दी। लेकिन ये धार्मिक विचार अकेले काम नहीं करते थे, इनका असली असर सामाजिक संदर्भ में दिखता था।
कैसे, कोई उदाहरण?
सोचिए, किसी गांव में दो पड़ोसियों की अनबन है, एक ने दूसरे की मदद करने से मना कर दिया। अगले ही दिन मना करने वाले की गाय बीमार पड़ गई। अब क्या होगा?
जाहिर है, शक सीधा उसी पड़ोसी पर जाएगा जिसने मदद नहीं मांगी थी। लोग कहेंगे जरूर इसने ही कुछ टोना टोटका किया है।
यही होता था, जादू टोना दुर्भाग्य को समझाने और किसी पर दोष मढ़ने की एक आसान भाषा बन गया था। खासकर हाशिए पर रहने वाली औरतें, जैसे गरीब, बूढ़ी, विधवा, जिनके पास सामाजिक सहारा कम था, वो आसान निशाना बनती थीं।
लेकिन सिर्फ औरतें ही नहीं,
पुरुष भी आरोपी होते थे, हालांकि औरतें ज्यादा थीं। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि समुदाय के अंदर के तनाव को बाहर निकालने और सामाजिक नियमों जैसे दान पुण्य करना, पड़ोसियों से बना के रखना, इनको लागू करवाने का एक तरीका भी था।
उस समय के लोगों की दुनिया देखने का नजरिया भी हमसे बहुत अलग था, है ना? ये समझना भी जरूरी है।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहाँ भगवान, शैतान, फरिश्ते, भूत प्रेत, ये सब असली माने जाते थे और जिंदगी में दखल देते थे।
अच्छा,
आज हम जिसे प्राकृतिक और अलौकिक कहते हैं, उनके बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। ईश्वर का चमत्कार भी हो सकता था और शैतान का हमला भी, कुछ भी संभव था।
और फिर धर्म सुधार, रिफॉर्मेशन और उसके जवाब में चले प्रति सुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन के दौर ने माहौल को और गर्मा दिया होगा।
यकीनन, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों खेमों में ये डर बढ़ गया कि शैतान उनके समाज को अंदर से खोखला कर रहा है, और जादूगरनी या जादूगर को शैतान का एजेंट समझा जाने लगा।
तो ये सिर्फ आम लोगों का विश्वास नहीं था?
नहीं, पढ़े लिखे लोग, धर्मगुरुओं, वकीलों, विद्वानों ने भी इसमें भूमिका निभाई। उन्होंने शैतान से संधि, रात की गुप्त सभाएं जिन्हें सबात कहते थे, उड़ने की शक्ति, रूप बदलने की कहानियां, शरीर पर शैतान के निशान जैसी बातों को व्यवस्थित किया, उनको एक थ्योरी की शक्ल दी, और फिर प्रिंटिंग प्रेस ने इन विचारों को तेजी से फैलाया।
बापरे।
और जब किसी पर शक होता था तो इकबाल करवाने के लिए क्या करते थे, सबूत कैसे जुटाते थे? यहीं पे चीजें और भयानक हो जाती हैं। सबूत भी बड़े अजीब होते थे, पड़ोसियों की गवाही, अक्सर वही जिनसे झगड़ा था, शरीर पर कोई असामान्य निशान ढूंढना जिसे शैतान का निशान कहा जाता था, अभियुक्त का प्रार्थना ठीक से न पढ़ पाना। लेकिन सबसे पुख्ता सबूत माना जाता था इकबालिया बयान, और इसे हासिल करने के लिए यूरोप के कई हिस्सों में यातना, मतलब टॉर्चर का इस्तेमाल आम था। सोचिए, यातना के डर से या दर्द से बचने के लिए लोग कुछ भी कबूल कर लेते होंगे, वो बातें भी जो उन्होंने कभी की ही नहीं।
और ये इकबाल फिर उन कहानियों को सच साबित कर देते थे, एक तरह का विशेष साइकिल।
हाँ बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र बन गया था। सेलियम जैसे मामलों में तो स्पेक्ट्रल एविडेंस जैसी चीजें भी मानी गईं, जहां पीड़ित कहता था कि आरोपी की आत्मा या भूत उसे सता रहा है। अब बताइए, कैसा सबूत है?
इसे तो कोई झुटला ही नहीं सकता।
बिल्कुल, इसे साबित करना या झुटलाना नामुमकिन था। कानूनी व्यवस्था अक्सर इस उन्माद को रोकने के बजाय बढ़ावा देती नजर आई, कम से कम शुरुआती दौर में।
ये जानना भी जरूरी है कि ज्यादातर आरोपी औरतें ही क्यों थीं? आपने कहा था लगभग 80%, क्या ये सिर्फ औरतों के प्रति नफरत थी, मतलब स्त्री द्वेष?
गैस्किल कहते हैं कि मामला इससे ज्यादा पेचीदा है। हाँ, उस समाज में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच थी, ये सच है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं था।
तो और क्या था?
औरतें अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर होती थीं। उनकी कुछ पारंपरिक भूमिकाएं थीं, जैसे दाई का काम करना, जड़ी बूटियों से इलाज करना, खाना बनाना, ये सब जिंदगी और मौत से जुड़े काम थे।
हाँ, बात तो सही है।
तो इन कामों में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उन पर शक करना आसान हो जाता था। उनके पास औपचारिक सत्ता कम थी, इसलिए अपना बचाव करना भी मुश्किल था। तो ये कई चीजों का मिला जुला असर था।
तो फिर ये सिलसिला रुका कैसे? मतलब ये मुकदमे बंद कैसे हुए? ये सब खत्म कैसे हुआ?
ये अचानक नहीं हुआ।
अच्छा।
ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो अलग अलग जगहों पर 17वीं सदी के बीच से 18वीं सदी के बीच तक चली। इसके कई कारण थे।
जैसे?
पहला, पढ़े लिखे तबके, खासकर जजों और प्रशासकों में शक बढ़ने लगा। उन्हें यातना के इस्तेमाल और सबूतों की अविश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। वो सोचने लगे कि क्या ये सब सच है?
अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर से सवाल उठे।
हाँ, और फिर विज्ञान की तरक्की का भी असर पड़ा होगा, है ना?
बिल्कुल, वैज्ञानिक क्रांति और फिर ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट, यानी तर्क और विज्ञान पर आधारित सोच का नया दौर। इसने दुनिया को देखने के नए तरीके दिए। हर चीज के पीछे कारण और प्रभाव ढूंढने की कोशिश बढ़ी।
हाँ,
जिससे जादुई व्याख्याएं कमजोर पड़ने लगी। कानूनी सुधार भी हुए, सबूतों के लिए ज्यादा कड़े नियम बने, सरकारें ज्यादा ताकतवर हुईं और उन्होंने स्थानीय मामलों में दखल देना शुरू किया।
और कभी कभी तो इतने ज्यादा मुकदमे होने लगे कि समाज में अव्यवस्था फैल गई। तब अधिकारियों को बीच में पड़ना पड़ा कि भाई बस करो अब।
लेकिन लोगों का विश्वास तो शायद रातों रात खत्म नहीं हुआ होगा। कानून बदल गया पर सोच?
सही कहा, अदालतों ने मुकदमे बंद कर दिए, लेकिन आम लोगों के बीच जादू टोने का डर और विश्वास वो लंबे समय तक बना रहा। और दिलचस्प बात यह है कि 20वीं सदी में विक्का जैसे नए आंदोलनों के जरिए जादू टोने का एक बिल्कुल अलग प्रकृति प्रेमी रूप फिर से सामने आया।
हाँ, ये तो बिल्कुल अलग चीज है।
हाँ, ये दिखाता है कि विच या डायन का मतलब कैसे डर से सशक्तिकरण के प्रतीक में बदल गया, कम से कम कुछ लोगों के लिए।
तो इस पूरे विश्लेषण से, इस पूरी कहानी से मुख्य बातें क्या निकलती हैं, क्या सबक हैं हमारे लिए?
सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे हम आज अंधविश्वास कहते हैं, वो उस जमाने के लोगों के लिए दुनिया को समझने का एक तर्कसंगत तरीका था। ये पागलपन नहीं था, बल्कि उनकी सच्चाई थी, उनका लॉजिक था।
ये नजरिया बदलना जरूरी है। दूसरा क्या?
दूसरा, ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं थी, ये समाज को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का एक जरिया था। आरोपों के डर से लोग सामाजिक नियमों को मानते थे, जैसे पड़ोसियों की मदद करना या समुदाय के साथ मिलकर चलना।
हाँ, मतलब एक तरह का सोशल कंट्रोल।
बिल्कुल। तीसरा, ये मामला इज्जत, रुतबे और ताकत से जुड़ा था। किसके पास शक्ति है, कौन समुदाय का हिस्सा है, कौन बाहरी है, ये सारे सवाल इन मुकदमों में छुपे होते थे। आरोप लगाना भी एक तरह से अपनी ताकत दिखाने का तरीका था।
और कानूनी व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा, जैसा आपने कहा।
हाँ, इन मुकदमों ने कानून की प्रक्रिया को बदला, खासकर सबूत और गवाही के मामले में। और अक्सर इस प्रक्रिया में राज्य यानी सरकार की ताकत बढ़ी, क्योंकि स्थानीय समुदायों के पारंपरिक न्याय के तरीकों पर कानूनी पेशेवर हावी हो गए।
और जैसा हमने पहले बात की, ये भी दिखता है कि समाज में कौन ज्यादा कमजोर है, किस पर आसानी से उंगली उठाई जा सकती है, मतलब लिंग भेद या सामाजिक हैसियत का मामला।
बिल्कुल। और आखिरी अहम बात है बलि का बकरा बनाने, मतलब स्केपगोटिंग की प्रवृत्ति। जब समाज में तनाव या डर फैलता है तो लोग अक्सर अपनी समस्याओं के लिए किसी कमजोर समूह को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं।
हाँ, ये चीजों में आज भी दिखती है ना, मुश्किल समय में कैसे अफवाहें फैलती हैं या किसी खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है।
बिल्कुल।
कैस्कल की कुछ बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे ये कहना कि जादू टोना भ्रम नहीं था बल्कि एक ऐसी दुनिया को समझने का तरीका था जो समझ से बाहर लगती थी। ये हमें उन लोगों की जगह खुद को रखकर सोचने को कहता है, कितना मुश्किल रहा होगा।
हाँ, या फिर ये कि हर विच ट्रायल आखिरकार ताकत का खेल था, किसके पास थी, कौन चाहता था और कौन इसे खोने से डरता था। ये पूरे मामले को व्यक्तिगत झगड़ों से उठाकर एक सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण देता है।
मुझे ये बात भी दिलचस्प लगी कि जादू धर्म का उल्टा नहीं बल्कि उसकी परछाई था जो उन लोगों को ताकत देता था जिन्हें स्थापित व्यवस्था ने किनारे कर दिया था। ये दिखाता है कि कैसे हाशिए पर पड़े लोग भी अपनी तरह से शक्ति ढूंढने की कोशिश करते हैं, भले ही वो तरीका खतरनाक माना जाए।
हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। और अंत में ये नतीजा कि विच ट्रायल का खत्म होना अंधविश्वास पर तर्क की जीत नहीं बल्कि एक तरह के अधिकार, राज्य, कानूनी पेशेवर की दूसरे पारंपरिक सामुदायिक न्याय पर जीत थी।
मतलब ये प्रोग्रेस की सीधी साधी कहानी नहीं है।
नहीं, ये हमें प्रगति की आसान कहानियों पर सवाल उठाने को कहता है। बदलाव हमेशा सिर्फ अच्छे कारणों से नहीं होते, ताकत का संतुलन बदलने से भी होते हैं।
तो ये सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन आज की जिंदगी में हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या आज भी कुछ मतलब है इनका?
मुझे नहीं लगता ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। गैसिल का विश्लेषण हमें आज की दुनिया को समझने में भी मदद करता है। सोचिए, आजकल फैलने वाली साजिश की कहानियां मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
या जब किसी मुद्दे पर समाज में अचानक डर फैल जाता है, जिसे मॉरल पैनिक कहते हैं। कैसे असली चिंताएं और डर कभी कभी अजीब लगने वाली व्याख्याओं और बलि का बकरा ढूंढने में बदल जाते हैं। इंटरनेट पर अफवाहें कैसे फैलती हैं, कैसे किसी समूह को समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, ये पैटर्न तो दिखता है।
हाँ, ये पैटर्न तो दिखता है, और समुदायों के अंदर के झगड़ों को समझने में भी मदद मिलती है। कैसे दबी हुई रंजिशें या अनसुलझे मसले अफवाहों या झूठे इल्जामों की शक्ल में बाहर आते हैं। हमारे यहाँ भी मोहल्लों में, गाँव में ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है कभी कभी।
सही कहा। ये दिखाता है कि खुलकर बात करना और मसलों को सुलझाना कितना जरूरी है, वरना वो ऐसे अजीब रूप ले सकते हैं।
और लिंग का पहलू भी, वो तो आज उतना ही प्रासंगिक है। कैसे लिंग आज भी तय करता है कि समाज में किसकी कितनी आवाज है, किसके पास कितने मौके हैं, कौन ज्यादा असुरक्षित है। ये ऐतिहासिक जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि ये मुद्दे कितने गहरे हैं।
शायद सबसे बड़ा सबक है ऐतिहासिक सहानुभूति का, मतलब एम्पथी। दूसरों को उनके समय और हालात के संदर्भ में समझने की कोशिश करना, भले ही हम उनकी बातों से सहमत ना हों।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
ये हमें आज की दुनिया में अलग अलग संस्कृतियों, विश्वासों और नजरियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।
तो मेरे लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है, वो ये कि जिसे हम आज आसानी से अतार्किक या क्रूर कहकर खारिज कर देते हैं, वो अपने समय में लोगों के लिए मायने रखता था। उनकी दुनिया का हिस्सा था, उनका अपना एक तर्क था। ये हमें इतिहास और आज दोनों को ज्यादा गहराई और हमदर्दी से देखने की चुनौती देता है।
और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये है कि अक्सर अजीब लगने वाले विश्वासों और आरोपों के पीछे असली सामाजिक तनाव, डर और झगड़े छुपे होते हैं। सिर्फ ऊपरी तौर पर उन्हें गलत कह देने से हम उन असली मुद्दों को समझने से चूक जाते हैं। ये हमें सिखाता है कि विश्वास, ताकत और समाज को नियंत्रित करने के तरीके कितने जटिल होते हैं, और ये सिर्फ अतीत की बात नहीं, आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि डर के माहौल में समाज कैसे प्रतिक्रिया करता है, और हमें इसके प्रति सचेत रहने की जरूरत है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।